राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 मई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
एक बात बतावें अच्छी, अगर वैसा हम अनुष्ठान करें, मानो वैसे ही हम बन जाएं, कोई एक व्रत ले लें, एक नियम ले लें, तो दुनिया का बड़ा भारी हित होगा और अपना ही कल्याण होगा। अपने कल्याण के लिए, दुनिया के हित के लिए एक बात बताते हैं, वैसा व्रत ले लें। क्या व्रत है वो? अपने जैसे किसी को बुरा न समझे और किसी की बुराई न करें और किसी की बुराई न सुने, तो किसी की बुराई देखे नहीं, किसी की बुराई सुने नहीं, किसी को बुरा कहे नहीं, किसी को बुरा माने नहीं, किसी को भी। ये अगर नियम ले लिया जाए तो अपनी सब बुराई मिट जाएगी। इतनी विलक्षण बात है इसमें। और बुरा मानने से अपना ही अंतकरण बुरा होगा, फायदा कुछ होगा ही नहीं। हम किसी को बुरा न माने तो कोई हमारा नुकसान हो सकता है किसी तरह का? किसी की बुराई न करें, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई न देखें, तो हमारा कुछ नुकसान हो सकता है या? और लाभ बड़ा भारी हो आपको। अगर कैसे देखे, बुराई करते हैं वो हिंसा करता है, हत्या करता है, पाप करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, निरपराधियों को मारता है, उसको बुरा कैसे न समझे? तो आप ध्यान देकर सुने कि भीतर में जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश बुरा होता है क्या? साक्षात ईश्वर का अंश क्या बुरा हो सकता है? संभव ही नहीं। तो बुराई क्या आई है कि उसने जो चोरी पहनी है, एक स्थूल शरीर की, एक सूक्ष्म शरीर की, एक कारण शरीर की, उन शरीरों के साथ आसक्ति करने से, अहंता और ममता करने से बुराई पैदा हुई है। तो बुराई पैदा होती है, और याद रखो बुराई स्वतः नहीं होती है, बुराई की जाती है। तीसरी बात, सर्वथा बुराई कोई कर ही नहीं सकता और सर्वथा कोई बुरा हो सकता ही नहीं, सर्वथा भला हो सकता है पर सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि बुराई आगंतुक दोष है, मूल में है नहीं, और भला स्वतः है, स्वाभाविक है, परमात्मा का आयुष होने से भला स्वतः है, स्वाभाविक है। गोस्वामी जी महाराज लिखते ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, छह बात बताई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, तो छह गुण है जिसमें, जीव अर्थ पांच गुण साथ में है, तो वो सहज सुखराशि है स्वाभाविक, और अमल शुद्ध है। तो आप ऊपर की चोरियां में देखते हो गुण, दुराचार करता है, अत्याचार करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, तो ये ऊपर शरीरों के द्वारा ये दोष होते हैं, ये दोष आगंतुक है। जैसे कोई बहुत क्रूर है, हत्या करता है, क्या वो अपने माँ बाप की भी हत्या करता है? क्या वो अपने स्त्री बच्चों की भी हत्या करता है? तो सर्वथा हत्यारा नहीं बन सकता। ऐसे झूठ बोलता है तो क्या अपने माँ बाप से, अपनी स्त्री से, अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से क्या झूठ बोलता है? चोरी करता है तो घर में ही सबकी चोरी करता है क्या? ऐसे जितने दुराचार है वे दुराचार सर्वथा पूर्णता से नहीं होते। पूरा सत्यवादी हो सकता है, पूरा असत्यवादी नहीं हो सकता। कहते कोई व्रत ले ले, कहते मैं तो झूठ ही बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ बोलूंगा। तो भूख लगी है, भाई भूख लगी है ना, करनी पड़ेगा। क्या प्यास लगी है ना, पानी पियोगे ना? प्यास नहीं होगी पानी पियोगे? हाँ, भूख नहीं है भोजन करोगे? हाँ, कैसे होगा व्यवहार, क्या करोगे? सच्चाई छोड़ नहीं सकती। झूठ बोलता है हम सच्चा बोलते हैं, ऐसे सच्चाई की चोरी में झूठ चलती है, स्वतंत्र झूठ नहीं चलती, क्योंकि झूठ है वो पीछे पैदा हुई है और सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है। तो बताया था ना देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है, तो परमात्मा की प्राप्ति के जितने गुण है वे सब कुछ देवी संपत्ति है, परमात्मा की संपत्ति है, उसमें अवगुण नहीं है, दुर्गुण नहीं, दुराचार नहीं है। आश्रय संपत्ति, तो आश्रय का अर्थ होगा कि अपने प्राण पोषण के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए आदमी पाप करता है। असुनाम प्राणाय गता सून अगता सून से नानु सोतंति पंडिता गता सून, जिसके अस्तु प्राण चले गए, कहीं अता सून है अगता सून है, तो असुनाम प्राणों का है, जो प्राण है इसको संस्कृत में असु कहते हैं। तो प्राण पोषण के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए पाप करता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि, न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण करता है तो ये किससे प्रेरित वो करता है, क्योंकि स्वयं पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख है और दुख कोई चाहते नहीं, तो दुख की खेती क्यों बोएगा? जिससे दुख हो ऐसा काम क्यों करेगा? तो नहीं करना चाहता है, फिर भी ये पाप करता है अनिच्छा भी, तो कहना प्रयुक्त किससे प्रेरित और करता है? तो भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध, कामना है ना मन में, वस्तु की कामना, भोग की कामना, संग्रह की कामना, आदर की कामना, प्रशंसा की कामना, मानो नाशवान वस्तु की जो इच्छा है वो पाप करवाती है, अविनाशी परमात्म प्राप्ति की इच्छा होती है वो पाप नहीं करवाती, क्योंकि परमात्म प्राप्ति पाप से होती नहीं। इस वास्ते असत वस्तुओं की जो आसक्ति है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, असत के संग से ये पाप होते हैं। तो भगवान कहते जय शत्रु महाबाहो काम रूपम सुधा दुरासदम, इस काम रूपी शत्रु को तो मारते फिर पाप नहीं होगा। तो पाप में कौन प्रेरित करता है? तो ये जो सुख भोग की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, आराम की इच्छा है, ये पाप करवाती है। इसमें एक आपको बात बतावे कि कामना और इच्छा करने से ना भोग मिलते हैं और ना इससे संग्रह में रुपये मिलते हैं, ना वस्तु मिलती है। क्या इच्छा करने से वस्तु मिल जाती है? इसमें एक बात समझने की, ध्यान देने की है कि कभी कभी इच्छा करते हैं वस्तु मिल जाती है, और कभी कभी बिना इच्छा मिल जाती है, और कभी कभी इच्छा न करने पर मिल जाती है, कभी इच्छा करने में मिल जाती है। तो इच्छा के साथ वस्तु के मिलने का संबंध नहीं रहा, ये अपना अनुभव करो, अनुभव शास्त्रीय बात छोड़ गए खुद का, तो वस्तु मिलने का कोई दूसरा जरिया है, इच्छा जरिया नहीं है। वो क्या है? भगवान का विधान। वो विधान होगा आप इच्छा करो तो मिल जाएगा, और भगवान का विधान नहीं होगा तो कितनी इच्छा कर दो वस्तु नहीं मिलेगी। तो इच्छा का क्या फायदा हुआ? सिवाय पाप के और बंधन के और कोई फल नहीं, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते कामना का त्याग करने जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तो काम रूपी बैरी को मार दो, ये भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा। इमं विवशते योग, ये योग है, सर्वथा कामना त्याग हो जाएगी तो योग हो जाएगा। योग क्या? भगवान के साथ संबंध, संसार के साथ संबंध कामना से है। कामना न रखे, कोई इच्छा न रखे तो संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊंचा उठ गया हो, संसार की गुलामी नहीं रहेगी, संसार की दासता नहीं रहेगी, संसार का ममतापना नहीं रहेगा, सब विच्छेद हो जाएगा। तो कर्म योग इमं विवशते योगम प्रभुवान, वही काम, कामना के त्याग से जो योग होता है वो परमात्मा का योग हो जाएगा। योग नाम परमात्मा के साथ संबंध, ये योग हुआ कर्म योग, कर्मों से योग हो जाएगा। मानो कामना छोड़कर और काम करे दूसरों के हित के लिए, दूसरों को उपकार लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए कामना और कामना का त्याग के लिए काम करे, मानुक धंधा करे कामना पूर्ति के लिए भी करे और कामना निवृत्ति के लिए भी करे, ये हर एक में लगा सकते हैं। हम व्याख्यान ले किसी कामना पूर्ति के लिए, रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, इसके लिए हम व्याख्यान दें तो उसका काम हो गया, कामना हो गई। और केवल कर्तव्य समझकर दुनिया के हित के लिए काम करें तो कामना का त्याग करने के लिए हम काम करें, व्याख्यान दें जो हमारे भीतर बैठे काम व्याख्यान देने की लालसा है उसको मिटाने के लिए, कामना मिटाने के लिए। और अगर ये नई कामना करते नहीं तो पुरानी कामना तो व्याख्यान देकर मिटा दें, और अगर ये कोई कामना रखे नहीं तो कामना मिट जाएगी, पुरानी कामना मिट जाएगी और नई कामना पैदा नहीं हो, निष्काम हो जाएगी, वीतराग हो जाएगा राग रहित। तो वीतराग होते ही परमात्मा के साथ हमारा संबंध हो जाएगा, राग रहते भी संबंध तो परमात्मा के साथ है, पर जिसमें राग है वो संबंध पकड़ लेते हैं तो फिर भगवान का संबंध है उसका अनुभव नहीं होता, राग वाली चीज को पकड़े रहते हैं। राग नहीं रहेगा तो स्वतः संबंध भगवान के साथ प्रकट हो जाएगा, ये कर्मयोग होगा। और भगवान से एकता कर रहे कि भगवान भी चिन्मय है हम भी चिन्मय है, तो ये ज्ञान योग हो जाएगा। और अपने आप को भगवान में ही लीन कर दें, अपना अस्तित्व ही न रखें एकदम, तो ये भक्ति योग हो जाएगा। भक्ति योग में अभिन्नता होती है, अभिन्नता का अर्थ अभेद होता है ज्ञान योग और संबंध होता है कर्म योग से, और अभिन्नता होती है प्रेम योग से। प्रेम में अपनापन होता है, अपनापन इतना गाढ़ होता है जिसमें दो नहीं होते, जैसे स्त्री और पुरुष विवाह होता है तो एक ग्रस्त कहलाता है, एक ग्रस्त होता है एक स्त्री पुरुष, अगर पुरुष न रहे तो स्त्री आधा ग्रस्त और स्त्री न रहे तो आधा ग्रस्त, दोनों होने से एक ग्रस्त, तो एक ग्रस्त होने से अभिन्न हो गया। तो प्रेम में अभिन्नता होती है, ज्ञान में अभेद होता है और कर्मयोग में संबंध होता है। अब तीनों अगर जाकर अभिन्न हो जाएंगे, ज्ञान योग से, भक्ति योग, प्रेम योग से, तो प्रेम योग हो जाएगा। तो कामना न करने से हम निहाल हो जाएंगे। कहते वस्तु है तो मैं पहले ही कह चुका कि कामनाओं के साथ वस्तुओं का संबंध नहीं है। कामना न करने से वस्तु सुगमता से मिलेगी, और कामना करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो वस्तु कठिनता से मिलेगी। कुछ भी कामना ना रखे तो वस्तु सुगमता से मिल जाएगी। हमें बहुत पुरानी बचपन में पढ़ी हुई एक कथा याद आ गई। साफ बच्चा नहीं था, कोई 10-12 साल होगा, 8-10 साल का, तो बीरबल विनोद पढ़ा था और एक पुस्तक पढ़ी उसमें تقدیر اور تدبیر یہ ایک ہوتا ہے, تقدیر تدبیر مانو اور پرشارتھ اپنی بھاشا میں پراگ اور پرشارتھ کہتے ہیں. تو دو بھائی تھے, وہ کوئی گہرا سدھانت نہیں ہے, ایک کہانی ہے سمجھنے کے لیے, گہری سچی بات نہیں ہے, تو جو سمجھنے کے لیے کام آتی ہے. تو ایک بھائی تقدیر مانتا تھا, پرارب مانتا تھا کہ پرارب سے ملے گا, اور ایک مانتا کہ پرارب سے نہیں ملے گا, ادیوگ کر سے پرشارتھ کرنے سے ملے گا. دونوں میں آپ کی بات ہوگی, دیکھو وہ کہیں تقدیر سے ملے گا, وہ کہیں تدبیر سے. پرارب سے ملے گا ایک ہے تو پرشارتھ سے ملے گا. جنگل میں چلے گئے, جنگل میں چلے گئے تو پرارب آگے بیٹھا رہا, اور وہ جنگل میں گھوما ادھر ادھر سے تو پھول لے آیا, پھل لے آیا, کھانے کی چیزیں لے آیا. لال دیکھو تو دیکھ کھا لے, تم بھی کھا دے کھا لو. کھانے کے بعد بولا دیکھ پرشارتھ سے ملی, بنا پرشارتھ کے بھوکا مرتے جی. وہ کہتے پرارب سے ملی, میں نے پرشارتھ کیا ہی نہیں. میں نے کیا پوچھا کیا, تو وہ اپنے اپنے سچے ہو گئے. تو میرا یہ عرض نہیں کہ پرارب مانے وہ نکم مارے, یہ ہمارا سدھانت نہیں ہے. پرارب ماننے کا ارتھ ہے چنتا نہ کرے, پرشارتھ کرے تو نہیں ملا تو پرارب نہیں ہے بھائی. تو پرارب کے بھروسے نکم مارے نا, یہ سدھانت کبھی نہیں ہے. اس کہانی میں جیسا آتا ہے میں بہت بچپن کی سنی ہوئی پڑی ہوئی بات. تو کامنا کرنے سے وستو مل جائے یہ نیم نہیں ہے. تو نشکام بھاو رکھیں, تو نشکام بھاو کب پشت ہوگا کہ کسی کا برا نہ کریں, کسی کا برا نہ چاہیں, کسی کی برائی نہ سنیں, نہ برائی کریں اور نہ چاہیں برا. تو برائی سے ہم چھوٹ جائیں گے تو بھلائی آپ سے آپ رہے گی. ہم لوگوں میں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے, آپ دھیان دے کر سنیں کہ بھلائی ہم کرتے ہیں تب ہوتی ہے, کرنے سے بھلائی نہیں ہوتی ہے پوری, برائی چھوڑنے سے ہوتی ہے. آپ سے بھلائی ہوتی ہے, بھلائی کی جڑ ہے پرماتما, ان سے پیدا ہوتی ہے, اور برائی ہے سوارتھ سے, کامنا سے. اس واسطے برائی پیدا ہوتی ہے اور بھلائی سوتہ سدھ ہے. برائی چھوڑنے پر بھلائی سوتہ ہو جائے گی. ہم جہاں نہیں رہتے ہیں ایسا جنگل شدھ ہے, اور وہیں دس پندرہ بیس دن رہ جائے تو جنگل اشدھ ہو جائے گا. تو اشدھ ہمارا کیا ہوا ہے, وہیں پانچ چھ مہینوں کے بعد میں صاف شدھ ہو جائے گا جنگل. شدھی سوتے ہوتی ہے, شدھ پرماتما ہے. پرکرتی بھی سوتے شدھ ہے, پرکرتی ساتھ سمبندھ جوڑنے سے اشدھی آتی ہے. سمبندھ نہ جوڑے نہ پرکرتی اشدھ ہے نہ پروش اشدھ ہے, شدھ ہے. ان میں ممتا کر لیتے ہیں, اہمتا کر لیتے ہیں, پرکرتی کے اہم کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں, پراکرت پروشوں سے ممتا کر لیتے ہیں, اس سے اشدھی آتی ہے سبھی, پھر کام نہ ہو جاتی ہے. تو یہ نہ کرے تو کسی کو برا نہ سمجھے, برا نہ کہے, برا نہ مانے, تو برائی کا تیاگ ہونے پر بھلائی اپنے آپ آ جائے گی سوتے. کیوں بھلائی سوتے ہے, پرماتما سوتے ہے. برائی اتپن ہوتی ہے, اتپن ہوتے ہوئے نشٹ ہونے والی ہوتی ہے, ہوتی نہیں. تو اس سے سنسار کا بڑا اپکار ہوگا. جو برائی سنتا رہے, برائی رہت ہوتا ہے, اس کے دوارا دنیا کا ہت آپ صاف ہوتا ہے. بھیتر سے باہر سے برائی رہے تو اس کی ہوا سے دنیا کو بھلا ہوتا ہے, ان کے درشنوں سے بھلا ہوتا ہے, ان کے بچنوں سے بھلا ہوتا ہے, ان کے اسپرش سے بھلا ہوتا ہے, ان کی وایو سے بھلا ہوتا ہے, اس کی چھایا سے بھلا ہوتا ہے. کیوں بھلائی بھلائی ہے, बर्फ से आग नहीं लगती, क्यों ठंडा ही ठंडा है। ऐसे भलाई वाला से बुराई पैदा नहीं होती। तो दुनिया में भलाई फैलती है तो सबका हित होता है, सबका उपकार होता है, सबका कल्याण होता है बुराई छोड़ने से। तो दुनिया में भला करना और अपना उद्धार करना हो तो बुराई बिना छोड़ दें। अब दूसरी दृष्टि से आपको बताऊं बात, यही बात, किसी को भी बुरा समझने का हमारे को क्या अधिकार है बताओ? क्या भगवान ने अधिकार लिया है कि तुम बुरा समझो? क्या प्रकृति ने अधिकार दिया है? क्या मनुष्यों ने अधिकार दिया है? क्या राजा ने अधिकार दिया है? क्या गुरु ने अधिकार दिया है कि तुम बुरा समझो, बुरा समझो दूसरों? हमारा क्या अधिकार है बुरा समझने का, बुरा मानने का और बुराई करने का क्या अधिकार है? हमारे को कहां ऐसे अधिकार की स्वतंत्रता की बात मिली है कि जैसे तुम बुराई करो, बुरा मानो, बुराई कहो? देखो तो बुराई देखो, कानों से बुराई सुनो, ऐसा कहीं विधान आता है? तो हमारे क्या अधिकार है? बहुत ही हमारा अधिकार नहीं है। भला देखना तो अधिकार है। प्रभु मैं जग लखी सब वासुदेव सर्वम, ऐसा हम मान सकते हैं। परंतु सबके सब राक्षस है, असुर है, भूत प्रेत पिशाच है, दुष्ट है, कसाई है, सबके सब ऐसा है अधिकार? और कैसा हो सकता है क्या? अगर वासुदेव सर्वम तो मान सकते हैं, भले कसाई हो, हम वासुदेव मान लेंगे, वासुदेव है कि ये ऐसा करता है कि नहीं। महाराज ये परमात्मा के लाडले हैं, ज्यादा लाड रखने से टावर बिगड़ जाता है, ये भगवान के लाड में ज्यादा है, इस बार लाड से बिगड़ गए। तुम्हारे कौन मना करता है? भला मानने का अधिकार है हमारे को, अच्छा मानने का अधिकार है, बुरा मानने का क्या अधिकार है? हम बुरा देखते हैं वो बुरा नहीं है, भला निकलता है। एक बात आई है कि गंगा जी के किनारे बिछड़ने वाले संत थे, कई ऐसे संत हैं, हरिद्वार से लेकर फिर चले गए गंगा सागर तक, गंगा सागर से हरिद्वार तक, गंगा जी किनारे किनारे भूमि ठहर गए, पांच दस दस दिन महीना ठहर गए, कहीं गांव में भिक्षा कर दी और घूमते रहे। तो गंगा जी के किनारे कई गांव हैं, उनमें भिक्षा की बड़ी चाल, साधु घूमते रहते हैं, भिक्षा मिल जाती है। तो वृद्ध संत गंगा जी के किनारे घूमते रहते हैं, दूर गए किसी दूर गए, फिर दूर रहे, फिर दूर गए। तो ऐसे एक संत गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे थे, तो किनारे कुछ ऊंचा चढ़ा हुआ किनारा था, गंगा जी नीचे आ गई, ऊपर बड़ी दुस्सा पड़ गया, भरा ऊपर चल रहे थे। तो दो पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष उधर से आ रहे थे, उनके हाथ में एक शीशी थी। तो उसने समझा कि ये कोई बदमाश आदमी है, मदिरा पीने वाले, मदिरा पी करके आ रहे हैं। ऐसे वो आते हुए देखा तो भाषणा पैदा हुई कि ऐसे कोई आदमी है। वहां एक नौका आ गई और नौका कुछ हिलने लगी, डुलने लगी, तो मेरा जो पुरुष था वो उसके को छोड़ कूद पड़ा, गंगा जी पूछ गई उसको पकड़ गया। अब देखा रही ये तो दुष्ट तो नहीं है, सज्जन आदमी है। तो फिर उनसे पार कर गंगा जी गए, पूछा तो कि मेरी ये कन्या है, ये ससुराल में थी, उसको लेने के लिए मैं गया था, अपनी पुत्री को लेकर आ रहा हूं और गंगा जल है मेरी शीशी में। तो विचार किया, ये बड़ी भूल होगी हमारी, ये तो बाप बेटी है, अपनी कन्या के साथ आ रहा, मैंने बुरी भावना कर दी, बड़ा पछताता हुआ साथ कि भाई ऐसी भावना दुष्ट भावना कभी नहीं करनी चाहिए, ये मुझ में पाप लग गया। कहते हैं कौन कुकर्म किए नहीं मैंने भूल सो लिए उधारे, भूल गया कोई पाप तो उदाहरण मिल गया। ऐसी खेप भरी रच पच के चकित भये लख के भिणजारी, तेरे भिणजारों से माल आता था तो ऐसी खेप भरी, ऐसा कौन कुकर्म, मैंने कौन सा कर कुकर्म नहीं किया, कर लिए जो गए भूल सो दूसरे को बुरा समझ करके उधारा ले लिया, और जो गए भूल से लिए उधारा, अब बाप बेटी को भी बदमाश समझ लिया कि उधार ले लिया ना, अपना पाप है नहीं वहां से ले ले, ऐसा पाप मैंने किया। टेर सुनो ब्रजराज मिला रे, मेरी टेर सुनो महाराज, मैं ऐसा हूं। तो ये संतों ने कहा तो उनके पछताता हुआ कि मैंने गलती करी, तो इसका अर्थ ये हुआ कभी किसी को बुरा नहीं देखना चाहिए, कभी भी। तो कभी बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा अंतकरण निर्मल हो जाएगा, ना तो बुराई करेंगे ना बुराई चाहेंगे। तो पाप का कारण कामना है, ये आया। अब कामना जब ऐसा पाप मैंने किया, टेर सुनो ब्रजराज मिला रे, मेरी टेर सुनो महाराज, मैं ऐसा हूं। तो ये संतों ने कहा तो उनके पछताता हुआ कि मैंने गलती करी, तो इसका अर्थ ये हुआ कभी किसी को बुरा नहीं देखना चाहिए, कभी भी। तो कभी बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा अंतकरण निर्मल हो जाएगा, ना तो बुराई करेंगे ना बुराई चाहेंगे। तो पाप का कारण कामना है, ये आया। अब कामना जब हमारे मन में, कामना में जो बुराई है हम चाहना क्यों करें, प्रारंभ पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर से पहले शरीर का प्रबंध करने के लिए प्रारंभ पहले बनता है, पीछे शरीर मिलता है। हमें माता बहनों से पूछो, इनके बालक पैदा होता है उससे पहले दूध पैदा होता है, दूध पीछे नहीं पहले पैदा होता है। वो बालक गर्भ में आता है तो गर्भ में आने पर प्राय रजो बंद हो जाता है रज, तो वहां आड़ लग जाने से वो खून ऊपर चढ़ने लगता है तो दूध बन जाता है, वो दूध पहले पैदा हो जाता है बालक से पहले। इस वास्ते बालक जन्मने पर वो माताएं समझदार होती है, दूध नहीं पिलाती है, वो दूध होता है गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है तो उस दूध को निकाल देते हैं, कील कहते कील निकाल दी, खिला जो है वो अगर बालक दे तो मर गया, तो वो दूध निकाल दे, निकाल के शुद्ध दूध आपका तो बच्चे को पाते हैं। तो इस तरह जम गया तो पहले दूध आया तो भी जमा है, पहले नहीं आता तो कैसे जमता, इसे सिद्ध होता है दूध पहले आता है बच्चा पीछे जमता है। तो प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। कहते हम चिंता नहीं करें तो मर जाएंगे, क्या चिंता से जियोगे नहीं, क्या अन्न नहीं मिले तो मर जाएंगे, क्या अन्न खाते खाते नहीं मरते हैं, प्राय अन्न खाते खाते ही मरते हैं, बिना अन्न बहुत कम मरते हैं। निर्वाह की चीजें तो बाकी रहती है, मरता है पहले। जिस निर्वाह की चिंता है रोटी है, कपड़ा है, जल है, मकान है, ये निर्वाह की चीज है। ये चीजें बाकी रहती पहले मरता है। दादू दुनिया बावली सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली भगवान तो देसी, तो पहले सवाल चिंता क्यों करो। तो बुराई न करने पर भलाई स्वतः होती है, और स्वतः होती है वो भलाई प्रकट होती है। ऊपर से भलाई भरते हैं, अच्छा काम करते हैं, भलाई भरते हैं, तो ऊपर की भरी हुई है, कभी कभी भीतर की बुराई निकल जाती है, क्योंकि भूख पे भीतर पड़ी है। और भीतर से ही बुराई बंद हो जाएगी तो कंचन खान खुले घट माही, रामदास की चोटो माही। कंचन खान खुली पर तो खानी खुल जाती है, आनंदी आनंदी, मौजी मौजी, आनंदी आनंदी, दूसरों को आनंद मिलता है। ऐसी खान खुल जाती है भीतर। तो बुराई न करना, बुरा न सोचना, ये सब छोड़ दे तो उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है। और बुराई हम छोड़ते नहीं किंतु भलाई करते हैं, तो भलाई करने से भलाई का अभिमान पैदा होता है। हम बोलने वाले हैं, हम दया करने वाले हैं, हम उपकार करने वाले हैं, हम हित करने वाले हैं, हमने इतना सजावट लगा दिया है, लोगों को अन्न देते हैं, प्याऊ लगा दी है, हमने अच्छा अच्छा काम किया है, तो अच्छा के साथ में अच्छाई की ये अभिमान की बात होती है। अच्छाई का अभिमान, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है, ऐसा एक नियम है। अच्छाई का अभिमान है उससे बुराई, अभिमान तो बुराई पर देगा। संसद मूल सूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, तो अभिमान से सकल शोकदायक। तो किया हुआ सदगुण सदाचार है उससे अभिमान पैदा होता है, और पैदा हुआ सच्चाई है उससे अभिमान पैदा नहीं होता। क्यों, हमने उद्योग किया ही नहीं, आप ही ठीक है, दया आ गई हमने काम कर दिया, तो स्वतः उपजाई दया वो काम कर दिए। तो क्रूरता का त्याग करो, अहित का त्याग करो। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं सुहृदत सर्वे ही नाम, मात्र प्राणियों के जो सुहृद होते हैं, हित करने वाले होते हैं, महात्मा होते हैं। सुहृद का अर्थ उपकार की कोई अपेक्षा नहीं, आप उपकार करें न करें हमारा उपकार ही होता है। उपकार औरों के प्रति नहीं, उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर तो करे ही भलाई। ऐसे भलाई तो स्वतः होती है, मंद करने पर भी भलाई करते हैं वे, मंद करने पर मंद भी नहीं करते। वे समझते हैं एक आपने ने मंद काम किया, खराब किया, हम पिता खराब के तो संसार में डबल बुराई हुई, और वो बुराई कर पर हम बुराई नहीं करें तो सिंगल बुराई नहीं, एक ही नहीं, निकले तो गाड़ी एक है, उतर तो अनेक, और जे गाड़ी उछले नहीं तो रहे एक ही एक, वो मिट जाएगी। तो बुराई न करने से भलाई स्वतः पैदा होती है, स्वतः पैदा होती है उसका अभिमान नहीं होता। हम श्वास लेते हैं साहब बड़ी भलाई करते हैं, क्या भलाई करी साहब, श्वास लिए बड़ा मर जाओगे, श्वास लेते हो तो बिना बुराई के आदमी जी सकता है काम से। और समझ लो एक दुर्जन परितोष न्याय होता है कि तो हम नहीं मानते इस बात को, तुम भी कहते हैं सब नहीं मानते, हम तो कहते हैं बुराई किए बिना आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा, निर्वाह नहीं होगा। अच्छा निर्वाह नहीं होता क्या करो, क्या होगा, क्या क्या मर जाएंगे, अन्न जल वस्त्र नहीं मिलेगा तो जिएगा सब मर जाएंगे। अच्छा अन्न जल न मिल से मर जाएंगे, तो अन्न जल खाते हुए नहीं मरेंगे, अंदर खाओ तो मर जाओ, नहीं तो मर जाओ। मरना तो अवश्य भावी है, फिर बुराई करके क्यों जीवे? बुराई कर हम जीत जाएंगे और भलाई करने से मर जाएंगे। क्यों बुराई करेंगे नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा। आजकल के जमाने में कुछ कुछ करना ही पड़ता है, बिना चोरी किए डाका डाले, बिना सेल टैक्स के इनकम टैक्स चोरी किए बिना कैसे निर्वाह होगा? सरकार के ऐसे कानून बन गए तो निर्वाह नहीं होगा तो क्या हम मरेंगे? तो भाई रोटी कपड़ा खाकर पहन करके मरोगे तो नंगे ही मर जाओ, क्या है? मरना तो है अवश्य, मरना तो लुटेगा नहीं। फिर बुराई करके क्यों मरे? कि बुराई से कई दिन ज्यादा जी जाएंगे, नहीं तो पहले ही मर जाएंगे। पहले नहीं मरेगा, मौत से पहले कोई नहीं मरता, मौत आने पर ही मिलता है। कि नहीं साहब, हम मानते हैं सर कि नहीं, कुछ खाए पीना बिना हम तो पहले ही मर जाएंगे। तो पहले मर जाएंगे तो क्या बुराई से जीवेंगे? तो जीना हमारा बुराई के लिए है क्या? ध्यान देना, बुराई से कई दिन जी जाएंगे और बुराई नहीं करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। तो जल्दी मरना, देरी से मरना, जो देरी से मरने तक उम्र मिली उस उम्र में बुराई करी तो बुराई करने के लिए शरीर मिला है क्या? बुराई करो तो बुराई से जीने के बाद भलाई मर जाना अच्छा है, अच्छा है। पवित्र पवित्र मर जाएगा, अपवित्र फिर भी मरेगा ही और पहले मरेगा नहीं, पहले नहीं मरेगा कोई भी। एक कहानी आती है, ये लोग है ना अपना गांव छोड़ बार बार चले जाते हैं, रंगर है चूर है गांव शहरों में देखो तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मकान है, उन मकानों में किसी ब्राह्मण को रख दिया, किसी आदमी को रख दिया कि तुम रहो। उनको महीना देते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं, महीना मिलता है, रखो रहते हैं। जो कई मकान ऐसे सुने रह जाते हैं, अभी छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे एक शहर में मकान था तो वे लोग चले गए कहीं दूर, पर 700 कोस दूर चले गए काम करने को। काफी वर्ष रह गए, पीछे अपने घर पर आए। घर पर आए तो घर को ठीक बनाया तो रात्रि में प्रेत तंग भूत रहने लग गए, वहां सोने घर में भूत रहने लग गए। भूतों ने तंग किया कि तुम्हारे को मारेंगे तो निकल जाओ घर से। तो कहा भाई देखो, हम निकले हमारे घर के नशा, हम रहते हमारे घर है, मारेंगे तो मार देंगे। तो कहा भाई देखो, निगाह करते हैं कोई घर मिल जाए तो उसमें चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, जल्दी करो नहीं तो मार देंगे। तो उन घर वालों ने पूछा कि तुम रात में ही हमारे को तंग करते हो, दिन में कहां जाते हो? रात रात में तंग करते हो कि दिन में हम विधाता के पास जाते हैं, जो बेमाता लिखते हैं सब लोग उसके हाजिरी में जाते हैं, रात्रि में आते रहते हैं, ये हमारे घर रहने की जगह है। तो एक काम हमारा करो, बोलो कि विधाता सबका लेख लिखती है ना, इतना उम्र होगी, इतना उम्र ऐसा, तो हमारी उम्र में से चाहे तो एक दिन घटा दो और चाहे एक दिन बढ़ा दो, ये हमारा काम कर जाओ, और लाकर मन दो फिर घर छोड़ देंगे। तो बाबा पास कैसा एक उन्होंने कहा है कि एक दिन चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो। तो उसने उत्तर दिया कि ये हम घटा बढ़ा नहीं सकते, हैजत नहीं रहेगा। जाकर के आते ये जवाब दिया है, घटा बढ़ा नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी भी घटा नहीं सकते, तुम मार लोगे? कैसे मार लोगे? अब निकलो तुम, निकलो तुम मुझे, क्योंकि हमारा घर है, मारने कैसे मार लोगे? एक दिन भी घटा नहीं सकते ब्रह्मा जी भी, तो तुम कैसे घटा दो, मार दोगे पहले? अब निकलो तो भाई लिख दिया विधाता देख नहीं चलने का करते राई बढ़े नहीं तिल नहीं घटने का राई तिल भी घटे बढ़े लिख दिया विधाता देख नहीं चलने का उत्साहेगा ही नहीं तो आप जीना आपके हाथ में नहीं है मरना कोई हाथ में नहीं है जितनी उम्र है जितने श्वास है उतने श्वास होने पर मर जाएंगे चाबी लगती है घड़ी के वो खट खट करके घर में चाबी खत्म हो जाए बंद हो जाती है ऐसे चाबी लगी हुई है ये खर्च तो हो रही है ऐसे चाबी लगा रहा हम आता नहीं तो कुछ श्वास पड़ रहे फिर वो भरना आता नहीं अगर खर्च खर्च हो रहा है तो खर्च होने में नहीं पड़ेगा क्यों श्वास दुष्ट हुई है तो उम्र घटती बढ़ती है कि नहीं घटती बढ़ती भी है जो दुराचार करता है अनाचार करता है चोरी व्यभिचार आदि करता है तो धोखनी तेज चलती भय आदि से तो जल्दी मरता है और शांति से रह भजन ध्यान करता है तो शांति से धीरे चलते हैं तो वो 7 दिन में घड़ी की चाबी लगती है उसको 10 घंटे निकाल रहे ऐसे करें तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी और नीचा खसरा दे तो 7-8-9 दिन तक चलेगी चाहे टाइम न दे पर चलेगी कई दिन की उसी तो चलेगी ऐसे स्वास्थ्य कम लेने से ज्यादा वर्ष जीत जाएंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे इस वास्ते श्वास है उतना देर जो कोई मार नहीं सकता तो घट बढ़ भी सकती है उम्र और न घटने बढ़ती उम्र क्या श्वास घटते बढ़ते नहीं श्वासों का दुरुपयोग करने से जल्दी मर जाते हैं और सदुपयोग शांति से जितना बस जी जाते हैं पर श्वास तो उतना ही जाए इस वास्ते जन्म मरने की चिंता करके आप पाप करो तो पाप करके जीने की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में मर जाना बड़ा अच्छा है ये लाभदायक है पाप करके जीने का क्या काम का तुम तो पाप करने के लिए जीते तो भाई आप किसी को बुरा न समझो बुराई से रहित हो जाए अपनी तरफ भलाई करो भलाई न कर सको तो कम से कम बुराई न करो फिर आपके द्वारा भलाई होगी सत्य होगी कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे तो बुराई तो नहीं होगी ना कुछ भी नहीं करेंगे तो बुराई नहीं होगी अरे करोगे तो भलाई ही होगी तो कुछ नहीं कर रहे कोई पाप नहीं लगता अरे भलाई करने से पाप नहीं लगता अब बुराई छोड़ने से कल्याण हो जाता है तो ये बुराई चीज है ये बुरी है कि भली किसी को पूछा जाए भाई बुराई करना भला है क्या बुराई करना भला कैसे होगा तो नाम ही बुराई है जिसका उसका भला कैसे तो बुराई न करने से भलाई स्वतः होती है सुरक्षित रहती है और उस भलाई का अभिमान नहीं होता क्यों आपने भलाई की नहीं आप ही भलाई हुई आपसे आप ही आपसे अभिमान नहीं होता श्वास आपसे आप लेते हैं तो अभिमान नहीं होता देखो सब श्वास ले लेते हैं कोई अभिमान नहीं अगर स्वतः श्वास लेते हैं तो अभिमान किस बात का तो भलाई करने का अपेक्षा भी बुराई छोड़ना बढ़िया है और बुराई स्वतः होगी स्वाभाविक होगी स्वतः होगी
श्वास का दुरुपयोग किन कामों से होता है
बोलो तो 12 पैंट 18 मैथुन करके 30 एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं 621 दिन जावत है दिन रात में 21,600 श्वास जाते हैं अब इसमें 24 का भाग ले लो
900
तो 627 अब इसमें बोले ज्यादा बोलेगा तो 12 श्वास अभी खर्च होंगे घंटा में 900 से और जोर से चलेगा तो 18 और स्टेशन करेगा तो 30 श्वास खर्च देना होगा स्टेशन से बोल 12 पैंट 18 मैं सुन करके 30 तो ऐसे चोरियां भी करते हैं तो श्वास तेज हो जाता है रावण भी गया 6 सीता जी की चोरी के लिए तो उसे भय लगा है। इधर देवता इधर रावण बस बरती नर नारी वो भी खराब रास्ते में पग रखता है तो धर्म बुद्धि ऐसा बुद्धि ज्ञान नहीं रहता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। ऐसे खराब रास्ते जाती बुद्धि बिगड़ती है, उसे नौकरी तेज हो जाती है आपसे आप और शांति रहती है। कुत्ता होता है भोंगता है तो भागता है, पास मारता है फिर भोंगता है फिर भागता है, और जो भोंगता रही वैसा सोता है इंदर मन से तो उसकी श्वास कैसे खर्च होंगे, भागेगा भूसेगा तो भोंगे श्वास धरा घर से पड़े पड़े कैसे होगा। तो ये श्वास जाने का कि ये खराब खराब काम है इससे श्वास तेज हो जाता है, चिंता होने से श्वास तेज हो जाता, चिंता होने पर भी श्वास तेज हो जाते हैं। निश्चिंत शांति रहो श्वास शांति से चलते हैं, इस वास्ते श्वास है जितना ही है। अब दुरुपयोग कर दो जल्दी खत्म हो जाए सदुपयोग अच्छा रहेगा। भजन ध्यान करने वाले कहते हैं रोगी हुए हैं 200 400 500 600 वर्ष तक, क्योंकि वो समाधि लगाते हैं श्वास खर्च नहीं करते, खर्च नहीं करते जो पड़े रहते हैं समाधि लगाते हैं। तो समाधि पहले शरीर को शुद्ध करते हैं, पेशाब है मल है उसको बदलोली है और नेती धोती करने से वो साफ कर देते हैं पहले, फिर वैसे समाधि करते हैं। नहीं तो फिर मैला पेशाब नीचे पड़ गया तो सर जागी आते इनको उनको साफ करके फिर समाधि लगा दे शांति से, तो कई वर्षों तक जीते रह जाते हैं। एक कहानी सुनी है मैंने, एक बहुरूपिया था उसने श्वास चढ़ाने की कला सीख ली, तो एक ठाकुर से कहा कि मैं समाधि लगा करता हूँ 6 महीनों की वर्ष की, तो मेरे को एक जगह रख दो मैं आपको बताऊंगा। तो ठाकुर ने कहा कि तुम समाधि लगा लोगे 6 महीनों की तो तुम्हारी समाधि आओगे तो हम तुम्हारे घोड़ा देंगे, तो घोड़ा देंगे। तो उसने समाधि लगा दी और कहा कि हमारे पीछे ऐसे ऐसे चंडो मकान छोटा चंडो सब तरफ से बंद कर दो, हवा आवे ही नहीं ऐसा कर दो कि हमारे हवाई जरूरत नहीं श्वास लेना ही नहीं है, उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया बाद में ठाकुर तो मर गए, तो भाई ना मैंने बाद में अरे वो हवा चली जिसमें इस तो आगे रीता आता तो बूर गया सब घट गया, रीता हो गया ऊपर खेत हो गया ऐसे ही। तो खेत बोने के लिए दिया गया कि तुम्हारे खेत दिया तुम खेती करो, तो वो हल चलाया तो वहां आते हला चल गया तो नीचे आ गया, नहीं तो नीचे मकान आगे ऊपर रहता था हल अटक गया तो धक्के से अटक गया, खोदा तो मकान निकल गया, मकान निकल गया तो मकान है जो घूम ले तो उनको बाहर रेता करके दूर उस मकान को करते, दरवाजे है ही नहीं मकान छोटा सा गुमटी बनी हुई दरवाजे ही नहीं, देखा तो उसको तोड़ा, तोड़ कर देखा तो भीतर में मनुष्य बैठा है, कोई भूत है प्रेत क्या है, अरे क्या बात है। तोड़ा तो तोड़ा तो कोई खंडहर उसके ऊपर पड़ा, उसे समाधि खुल गई, समाधि खुल गई और बोले लाठाकर घोड़ा बस समाधि कर वो घोड़े की समाधि देर रखा तो लाठ उठा ठाकुर घोड़ा और ठाकुर को ठाकुर ने पीढ़ी हमें थी कई बार बच्चे हो गए पता ही नहीं कौन कहा था। तो ऐसी समाधियों से श्वास तो रह जाते हैं वो आगे महाराष्ट्र में सिद्ध थे ना एक चांगदेव, चांगदेव कितने वर्षों के थे वो 1400 साल के थे, ज्ञानेश्वर जी और मुत्ता भाई और दूसरी क्या भाई सोपान देव ज्ञान देव छोटी बहन भाई तो बड़े बड़े थे, बहन सबसे छोटी थी, तो ये खेलते थे तो ढींच पर बैठे थे। घोड़ा है कि घोड़ा थोड़ा मकिन घोड़ा चलत रही, जो खेल रहे थे तो उधर से चांद देखा, पहले कागज दिया तो चांद देव ने कागज दिया, वो क्या लिखे, छोड़ा है ये तो महाराज ज्ञान देव जी महाराज लड़के थे, छोटी अवस्था थी और हम इतने बूढ़े क्या लिखे, उनको बड़े लिखे तो महिमा सुनी थी तो बड़ा कैसे लिखे छोटा भी कैसे लिखे, तो अंत में उन्हें कोड़ा कागज दे दिया। तो मुक्ता बाजी ने कहा कि 1400 बरस जीवन है, कोड़ा कागज कुछ नहीं है। तो फिर बैठे थे खेलते थे, वो आए सिंह महाराज 12 महीना तक जो कोई मरते उनको लाला कर वहां रख लेते, ठीक जब भी समाधि खुलती तो उन वर्षों तक 12 वर्ष के कई बाद में सब मरदों को दिला देती, तो लोग मरते थे वो वहां ले जाते थे। तो भी आए उधर से तो सिंह की जो सवारी सांप का चाबुक हाथ में लिया हुआ, वो वैसे आए तो कहा कि महाराज चांगदेव जी तो 1400 साल का है, वो आ रहे हैं अब दर्शनों के लिए, वो सिंह पर चढ़े हुए हैं। तो क्या सुनी कहा भीत अपने भी चलो, वे संतों का आदर करने के लिए सामने चलो, तो तुम भी चलो भीत चल पड़ी भीत बैठे की लगा रहे, मैं तो सिंह पर चढ़ा हूं और भीत ही चल रहे, तुम 1400 वर्ष पर रहे कोरे के कोरे तंगू बनाया उनको चांगदेव ने, ज्यादा जीने से कोई लाभ थोड़ी हो जाता है क्या, उसमें शरीर धारण कर दिया समाधि कर दी, मेरुदंड की खाक बनेगी, झूठा जो कमाया अब मेरुदंड में 33 गांठे छेद करके प्राण चढ़ाया ऊंचा किया कि मुख नहीं मोह देगा राख हो जाएगी बच जाएगी, झूठा जो है परमात्मा तो तू वो जान तो मुक्ति हो जाए, योगों में क्या पड़ा समाधियों में, इसे झूठा तो हो गए। तो बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है और स्वतः भुलाए भलाई होने से दुनिया का कल्याण होता है, बुराई छोड़ने से दुनिया का कल्याण, दुनिया में हलचल और दुख कब होता है, बुरे राक्षस असुर पैदा होते हैं तो दुनिया में हलचल होती है, तो बुराई छोड़ने से भलाई होगी शुद्ध स्वाभाविक, एक बुराई करने से दुनिया मात्र में बुराई होती है। एवं प्रवर्तितम चक्रम में यद्यचरती श्रेष्ठ तत्वदेव सक्ता कर्मण्य विद्वान स्वाभाविक सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुरिया विद्वांस तथा सक्तस्तिकेशो लोक संग्रहम। तो जो आसक्ति रहित होते हैं वे कर्म करते हैं तो उनमें भलाई होती है। गाड़ी होती है ना गाड़ी बैलगाड़ी, उसमें जो चक्के होते हैं पड़ी है उसमें इतना सा टुकड़ा टूट जाए काठ का तो ये वृक्ष की गाड़ी तो एक जगह लगती है, तो जैसे बिना तार के रेडियो जाता है ऐसे भलाई तो तेज बनती है, बुराई के परमाणु तो भारी होते हैं, भलाई के परमाणु हल्के होते हैं तो बहुत व्यापक होते हैं। तो एक राम इतना कहा त्रिलोकी में भगवान का नाम पहुंचा ही त्रिलोकी में सब जगह, तो एक भगवान के चिंतन करने से दुनिया मात्र का भलाई होता है। भागवत में आया है यथा तरोर मूल निषेचन, ये वृक्ष इसका मूल में निषेचन करने से तृत्यंत स्कंद भूलोक शाखा, इसका स्कंद है नीचे का बड़ा तना ये भी पुष्ट होगा, ऊपर की शाखा है तो छोटी ये हुई छोटी छोटी टहनिया अत्यन्यों के लगे पत्ते और फूल और फल तक उधर पहुंचता है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के सब अवयव तर हो जाते हैं, जैसे प्राणों को हराते हैं, जहाँ अन्न जल देने से सब शरीर में प्राण संचार होता है, ठीक तरह से आदमी निरोग हो जाता है, यहाँ अन्न जल बंद कर दे तो मर जाता है। तो जैसे मूल में चेतन किया ऐसा तरोर मूल में चेतन है ना, तृत्यंत तस्कंद भुजो प्रशाखा प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणी, प्राण को उपहार देने से सब इंद्रिया में शक्ति आ जाती, तथा सर्वाधन मच्युते जा भगवान का पूजन भजन करने से त्रिलोकी को शांति पहुंचती है, क्यों मूल परमात्मा है। व्यक्त मूल मनाधिमत अनाधिमूल भगवान है, तो भगवान का भजन स्मरण करने से वहां की पुष्टि दुनिया मात्र पूजा होती है। एक भगवान का पूजन कर सब जगह पूजन हो जाता है। जो भी ये कथा आपने सुनी है प्रसिद्ध है, दुर्योधन क्या करता है कि वो ऐसे ही पांडव मर जाए, घनी मारने इच्छा करी, मरे खुदा विशेष, तो दुर्वासा को राजी कर दिया। 10,000 शिष्य दुर्वासा में, तो सुबह भोजन बनावे शाम तक तैयार, और शाम को फिर बनावे सुबह तक तैयार। जब आओ दुर्वासा, कहा महाराज भोजन कर लो, अभी ताजा भोजन मिल गया। वो कभी आवे रात आधी रात गाओ भोजन, हाँ सब तैयार है, गर्मा गर्म भोजन पाओ। तो दुर्वासा खुश हो गए, तुम मांगो हमारे से क्या मांगते हो। वो कहा महाराज हमारे बड़े भाई है युधिष्ठिर, वे जंगल में रहते हैं, वहां भी अतिथि हो आप, एक दिन जाओ वहां भी हमारे यहाँ मेहमान जाओ। और जाओ किस समय में कि जब द्रौपदी भोजन कर चुके, उसके बाद वो थाली मांझ लेने बटलोई, उसके बाद जाना आप। वो सूर्य का दिया अक्षय पात्र था, तो वो हजारों ब्राह्मण युधिष्ठिर के साथ में 80,000 ब्राह्मण भोजन करते थे युधिष्ठिर महाराज के यहाँ। अब उसको जंगल वनवास हो गया तो बहुत जी साथ में हो गए, उसने प्रार्थना की महाराज मैं जंगल में जाता हूँ, काले मृग की मृगशाला पहन कर जाता हूँ, मेरे कपड़े पूरे नहीं है, आपको भोजन कहाँ से दूंगा, तो तुम्हारे भोजन में तुम्हारे को नहीं करें, हम रहेंगे तुम्हारे साथ, दूसरे भैया नहीं रहेंगे। तो उनको साथ में लगा तो चिंता लग गई, तो धौम ऋषि थे उनके पुरोहित, क्या करें महाराज, कभी सूर्य की उपासना करूँ, सूर्य का स्तोत्र बताया है महाभारत में, वो क्या सूर्य प्रकट हो गए, ये सविता है सूर्य है ना, सबको उत्पन्न करने वाले पालन करने वाले, तुमने एक पात्र दे दिया बटलोई, इसमें तुम एक वक्त जो कुछ वैशाक पत्ती अन्न जो कुछ पका लो, अरे वो जब पीछे पीछे कौन दिन पाएगा, पीछे पीछे द्रौपदी भोजन करती है, कि द्रौपदी भोजन जब तक न करेगी तब सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों को चीमा दो नहीं फूटेगा, अब भोजन कर देवरी कर दे तो उस दिन फिर नहीं होगा, दूसरे दिन पर पड़ेगा वो, उस दिन तो जाऊंगे। तो जो भी भोजन कर चुके तब जाना, तो अन्न मिलेगा नहीं और साफ ले लेंगे, अपना काम बन जाएगा सब ठीक तरह से। ऐसा विचार करके वो देखा, वो समाधि लगा, देखते थे महाराज शिवजी थे उनके पास में, देखा अभी भोजन द्रौपदी ने कर लिया, सब आराम कर रहे। उस समय में दुर्वासा आए।